कहिए राधिका, क्यों मिलना चाहती थी आप मुझसे? उस दिन के बाद आज जाकर राधिका ने माधव को फोन किया था। वो पहले तो हैरान हो गया, पर फिर राधिका ने कहा तो मिलने के लिए तैयार हो गया। और अब राधिका और माधव उसके केबिन में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राधिका जो अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रही थी, उसने झिझकते हुए निगाहें माधव की ओर घुमाई, जो चेहरे पर गंभीर भाव लिए उसे ही देख रहा था। कहिए, मैं सुन रहा हूँ, और जो भी कहने आई हैं बेझिझक कहिए। सबसे पहले तो दोस्त हैं हम, और दोस्तों से कुछ भी कहने से पहले सोचना नहीं पड़ता। इतनी अच्छी दोस्ती चल रही थी, फिर आपने रिश्ते की बात करके हमारा रिश्ता खराब क्यों कर दिया? राधिका ने बेबस निगाहों से उसे देखते हुए शिकायत की। माधव अब भी गंभीर बना रहा। ये तो अपने अपने नज़रिए की बात है। आपको लग रहा है कि हमारी दोस्ती खराब हो गई है, और मुझे लगता है कि इतनी गहरी दोस्ती के बाद अगर हम शादी के रिश्ते में बनते हैं तो हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। पर अचानक आप शादी के बारे में क्यों सोचने लगे? मैंने बताया तो था आपको कि मुझे शादी नहीं करनी है, राधिका ने बेचैनी से सवाल किया। माधव ने उसके इस सवाल पर संजीदगी से जवाब दिया। राधिका, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे दिल में आपके लिए क्या है। मैंने हमेशा से अपनी पत्नी के रूप में सिर्फ आपको देखा है। आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के सपने सजाए हैं। मेरे लिए प्यार का मतलब आपसे है, और जीवन साथी के रूप में जो छवि मेरे दिल में बसी है वो आपकी है। पिछली बार हालातों के आगे मजबूर होकर मैंने अपनी ज़िंदगी में वो जगह किसी और को देने की कोशिश की थी जिस पर आपका हक मानता था, और उसका अंजाम भी भुगत चुका हूँ। और अब मैं आपके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। पहले एक बार खो चुका हूँ आपको, अब दोबारा नहीं खोना चाहता। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत को तन्हा घुट घुट कर जीते देखूं, या उसे किसी और का होने दूं। और ना ही अब मुझ में इतनी सहन शक्ति है कि अपनी ज़िंदगी में किसी और को शामिल करके एक बार फिर अपनी खुशियों को खुद से दूर जाने दूं। मैंने बहुत ही सोचने समझने के बाद ये फ़ैसला लिया है। मेरा परिवार, आपका परिवार, सब इस फैसले से खुश है। सिर्फ आज मेरा हाथ थामने से झिझक रही है, और मैं वजह जानना चाहता हूँ कि आप क्यों मुझसे शादी नहीं करना चाहती, क्यों इस रिश्ते के खिलाफ हैं, जबकि एक वक्त था जब आप भी यही चाहती थीं। तब की बात और थी माधव जी, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं, न मैं, न आप और ना ही समय। इन बीते सालों में बहुत कुछ बदल गया है, और सबसे ज्यादा बदल गई हूँ मैं। मुझे ये तन्हाई पसंद है, इस अकेलेपन में भी सुकून महसूस करती हूँ मैं। मुझे नहीं करनी है शादी, आपसे भी नहीं और किसी और से भी नहीं। क्यों? राधिका, आप कमजोर पड़ने लगी थी, माधव का सवाल सुनकर बिफर पड़ी। क्योंकि मैं अब भी अपना अतीत नहीं भूली हूँ, और शायद कभी भूल भी नहीं पाऊंगी। शादी का जो अंजाम मैंने सहना पड़ा और पति का जो रूप मैंने देखा, उसे भुलाकर आगे बढ़ना इतना भी आसान नहीं है। मेरे मन में इस रिश्ते को लेकर एक भैंसा बैठ गया है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं कभी भी एक नॉर्मल लड़की जैसे रह पाऊंगी, या अगर मेरी शादी हो गई तो उस रिश्ते को निभा पाऊंगी, अपने पति को खुश रख पाऊंगी। पता नहीं मैं आपको ठीक से समझा भी पा रही हूँ या नहीं, और आप मुझे समझ भी पाएंगे या नहीं, पर मैं अब शादी के बारे में सोचती भी हूँ तो मुझे वो सब याद आ जाता है। मेरी रूह कांप जाती है, ऐसा लगता है जैसे दम घुट रहा है मेरा, सांस नहीं आती मुझे, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। शादी मेरे लिए एक ऐसा डरावना ख्वाब है जिसे देखने से भी घबराती हूँ मैं। राधिका की आंखें झिलमिला गई थीं और गला भराया था। उसने अपना चेहरा फेर लिया और खामोशी से सिसकने लगी। वो भय आज फिर उस पर हावी हो रहा था, और उसकी ये हालत देखकर माधव घबरा गया था। राधिका की बातों से इतना तो समझ गया था वो कि उसे शादी का ट्रॉमा है, पर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि वो कदर टूट गई है, यही नहीं समझ पा रहा था वो। माधव उठकर अब राधिका के पास चला आया, बड़ी ही प्यार से उसके आंसुओं को अपनी उंगलियों से पोंछ दिया और उसके चेहरे को अपनी हथेली में भरते हुए बेहद प्यार से सवाल किया। राधिका, क्या मुझे अपना दोस्त समझकर आप अपना दिल हल्का कर सकती हैं? क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्या हुआ है आपके साथ जो शादी जैसे रिश्ते से इतना खौफजदा हैं आप? क्या वजह है इन आंसुओं की? राधिका कुछ पल भीगी पलकें उठाए नम आंखों से उसे देखती रही, फिर अपनी निगाहें झुका दी। झुकी पलकों के नीचे से आंसुओं से धार बहने लगी और थरथराते लब अपने दर्द की कहानी सुनाने लगे। अपने पति के रूप में आपको चाहा था मैंने, पर आपसे रिश्ता टूट गया। आपको लेकर दिल में जो भावनाएं पनप रही थीं, मैं उन्हें किसी के सामने व्यक्त तक नहीं कर सकी, और आपको भुला भी नहीं सकी थी कि मेरा रिश्ता अजय से जोड़ दिया गया। अजय को ना मैंने कभी देखा था, ना बात की थी, ना उसके बारे में कुछ जानती थी, और ना ही ऐसी कोई इच्छा बाकी रह गई थी मुझमें। मुझे तो शादी ही नहीं करनी थी, पर मम्मी पापा की इच्छा का मान रखते हुए उस अनचाहे बंधन में बंध गई। शादी हुई थी मेरी, और आपके लिए अपने दिल में मौजूद एहसासों को अपने दिल में दफना कर मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई थी। शादी की पहली रात मैंने अपने पति से वक्त मांग लिया, और बदले में उसने मेरे चरित्र पर ही सवाल उठा दिया। उसी रात मुझे एहसास हो गया था कि अजय वो नहीं जैसे हम सफ़र की ख्वाहिश मुझे थी, और अब आगे का सफ़र आसान नहीं होगा मेरे लिए। अगले दिन नशे में उसने रेप किया मेरा,
पति का हक लेने के लिए जबरदस्ती की मेरे साथ और मैं कुछ नहीं कर सकी। उस रात वो मेरा पति नहीं, एक वहशी दरिंदा बन गया था जिसे बस अपनी हवस मिटाने से मतलब था और उसने मेरे शरीर को गोश्त के टुकड़े जैसे नोच खाया था। राधिका ने अपनी आंखों को भींच लिया, दर्द भरी सिसकी उन थरथराते लबों से आजाद हुई और उसका पूरा वजूद कांप गया। माधव की आंखें फटी की फटी रह गईं और राधिका के दर्द की कल्पना करके ही उसकी रूह कांप गई। राधिका नहीं रुकी, कमजोर नहीं पड़ी, उसने खुद को संभाला और आगे कहने लगी। उसकी दरिंदगी सहने के बाद मुझमें इतनी भी हिम्मत बाकी नहीं रह गई थी कि हिल भी सकूं। अपने ही वजूद से घिनआ रही थी मुझे, मेरी आत्मा को रौंदा गया था, मेरा वजूद घायल था, मेरा अस्तित्व लहूलुहान था। दर्द से तड़प रही थी मैं, पर उसे अपनी करनी पर जरा अफसोस नहीं था। मैरिटल रेप हुआ था मेरा और जिसको पता चला उसने जिम्मेदार मुझे ही ठहरा दिया कि गलती मेरी ही है, अपने पति की जरूरत का ख्याल नहीं रखूंगी तो ऐसा तो होगा ही। मेरी अपनी माँ ने मुझे सब खामोशी से सहने की सलाह दी कि हर लड़की को ये सब सहना पड़ता है। मैं टूट गई थी पर किसी ने मेरा दर्द नहीं समझा। मैंने समझौता कर लिया अपने दर्द से, जो था उसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया। कोशिश करने लगी उस रिश्ते को निभाने और उसे खुश रखने की, पर उस रिश्ते में कहीं मैं थी ही नहीं, सिर्फ वो था, उसकी खुशी, उसकी ज़रूरतें, उसकी ख्वाहिशें, उसकी इच्छा, उसकी मर्जी, सब कुछ उसका। यहाँ तक कि मैं भी उसी की थी, मेरा खुद पर ही कोई अधिकार नहीं था। उसका जब दिल होता आकर अपने जिस्म की भूख मिटा लेता, अपनी ज़रूरतें पूरी करता, पर उसने कभी एक बार प्यार से मुझसे बात तक नहीं की। मेरी कोई इज्जत नहीं थी उसकी नज़रों में और वो हमेशा बस मुझे जलील करता था। मुझे ये एहसास दिलाता था कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ, वो मजबूरी में मुझे झेल रहा है।
उसने मेरी पढ़ाई तक छुड़वा दी, मुझे घर की नौकरानी से भी बदतर ट्रीट किया, मुझे मेरे ही घर नहीं जाने दिया, उनसे बात करने पर रोक लगा दी। मैं जैसे उसकी बीवी नहीं, उसकी गुलाम थी, जो सुबह से लेकर रात तक उसके हर छोटे बड़े काम करती, उसकी कड़वी बातें सुनती, उसका गुस्सा सहती, रात को उसकी हवस मिटाती। बस इसलिए थी मैं उस घर में। कितनी ही बार उसने ज़बरदस्ती की मेरे साथ, मैंने सब सहना पड़ा, क्योंकि मेरी मम्मी यही चाहती थी। उन्हें मेरी बाकी बहनों की ज़िंदगी और उनके भविष्य की चिंता थी और उनके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी तबाह होने दी, अपने सपनों, चाहतों, ख्वाहिशों, सबकी कुर्बानी दी। फिर भी वो खुश नहीं था मुझसे, उसके पास तो मेरे लिए वक्त तक नहीं था, कभी साथ बैठकर बातें तक नहीं की, कभी अपने साथ कहीं बाहर नहीं लेकर गया, क्योंकि उसकी नज़रों में मैं इस लायक थी ही नहीं। मैं तो सिर्फ उनके घर में कैद होकर उनकी गुलामी करने और उनके जिस्म की भूख मिटाने के लिए थी। उन्हें मुझ पर प्यार भी तब आता जब मेरी ज़रूरत पड़ती, ताकि अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। ऐसे तो मैं मर भी रही होती तब भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई परवाह ही नहीं थी उन्हें मेरी और ना ही उनकी ज़िंदगी में कोई हैसियत थी। इतना कम था जो मेरे प्रेग्नेंट होने पर भी वो मुझ पर ही नाराज़ होने लगा, अबॉर्शन के लिए कहा, और जब डॉक्टर ने मना कर दिया और हमें बच्चा रखना पड़ा तो और गुस्सा रहने लगा, क्योंकि फिर मैं उनकी वासना की पूर्ति नहीं कर पा रही थी। और फिर वो बाहर अफेयर चलाने लगा, अपने ऑफिस की कलीग के साथ रातें बिताने लगा, मुझ में झूठ कहता रहा और जब मुझे पता चला, मैंने उनसे सवाल किया तो मुझ पर हाथ उठा दिया। राधिका के कांपते लबों से सिसकी निकली पर वो खामोश नहीं हुई। उस रात मैं सारी रात रोई, वो सब सहन नहीं हो रहा था मुझसे, थक गई थी मैं, मेरी बर्दाश्त की सीमा पार हो गई थी। मुझे नहीं रहना था उसे खुदगर्ज धोखेबाज टॉक्सिक इंसान के साथ। अगली सुबह खूब लड़ाई हुई हमारी, मैंने मम्मी को सब बताया और कहा कि अब मैं उनके साथ नहीं रहूंगी, घर लौट आऊंगी, पर मम्मी ने मना कर दिया, कहने लगी जवानी में गलतियां हो जाती हैं, मर्द बहक जाते हैं, भूल जाऊं सब, माफ़ कर दूं उन्हें, अपने बच्चे के लिए सब सह जाऊं। और मैं सह गई पर उसे माफ़ नहीं कर सकी। कुछ दिन बाद नशे में धुत आधी रात को वो उस लड़की को घर ले आया, फिर हमारी बहस हुई और उसने धक्का मार दिया मुझे। इस हादसे में मैंने अपना बच्चा खो दिया और सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर भी मैं उसी घर में रही क्योंकि जानती थी कि वो आदमी मुझे इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं देगा। मेरी मम्मी ये सब सहन नहीं कर सकी और मैं जब उनसे आखिरी बार मिली तब उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि छोड़ दो उसे। माँ चली गई, उनके अंतिम संस्कार में वो भी आया था। इसके बाद राधिका ने रोते हुए माधव को डिवोर्स तक की सारी बातें बता दी। माधव नम आंखों से उसे देखता रहा, शायद उसके दर्द का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था पर नाकाम रहा, क्योंकि राधिका का दर्द इतना ज़्यादा था कि उसके अलावा कोई उसकी थाह नहीं पा सकता था। सारी बातें बताने के बाद राधिका ने अपनी हथेलियों से अपने आंसुओं को पोंछा, भीगी पलके माधव की ओर उठाई और रुंधे स्वर में बोली, आपकी कामना की थी मैंने, पर जो मिला उसने जीते जी मेरी ज़िंदगी को नर्क से बदतर बना दिया। हर पल मुझे जलील किया, अपने गुरूर तले मेरे वजूद को रौंद दिया, अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए मेरे अस्तित्व को मिटा दिया, निर्दयता से मेरे दिल को तोड़ा, मेरी भावनाओं को क्रूरता से अपने अहंकार तले कुचल दिया।
मेरे जिस्म पर नहीं रूह पर जख्म दिए, ऐसे जख्म जो आज भी रिसते हैं। पति होकर जल्लादों जैसा सलूक किया मेरे साथ, एक जीते जागते इंसान से उसकी पहचान छीनकर उसे अपने इशारों पर चलने वाली कठपुतली बना लिया, मुझे पत्नी की जगह बस अपनी हवस मिटाने का जरिया बना लिया, मेरी इज्जत की रक्षा करने का वचन देकर खुद दरिंदगी की हर सीमा पार कर दी। पति का जो रूप मैंने देखा उसके बाद अब उस शब्द से ही खौफ आता है मुझे। शादी के रिश्ते के नाम पर जो छल मेरे साथ हुआ और जो मुझे सहना पड़ा, उसके बाद शादी शब्द से नफरत हो गई है मुझे। मैं वो सब याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है, वो दर्द जो मैंने सहना पड़ा असहनीय हो जाता है। अपनी बेबसी याद करके खुद पर ही गुस्सा आता है मुझे, और उस हैवान ने मेरे जिस्म को छुआ ये याद करके खुद से ही घिनाने लगती है। अब किसी का छूना बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मैं अब दोबारा कभी शादी जैसे रिश्ते पर विश्वास नहीं कर सकती। जानती हूँ कि आप अजय जैसे नहीं हैं, पर अपने दिल का क्या करूँ, जो शादी शब्द सुनकर ही भय से कांप उठता है, जिसे अब इस रिश्ते पर विश्वास ही नहीं रहा। मैं अब वो पहले वाली राधिका नहीं रही। पहले शायद आपके लायक थी भी, पर अब नहीं हूँ। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रही हूँ, इस बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए। मैं तनहा काट लूँगी अपनी ज़िंदगी, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए, किसी और से शादी कर लीजिए, खुश रहिए, क्योंकि मैं आपको कोई खुशी नहीं दे सकती। राधिका ने माधव के आगे हाथ जोड़ दिए और जैसे ही उठने लगी, माधव ने उसकी कलाई थाम कर उसे रोक लिया। टू बी कंटिन्यूड। अब क्या करेगा माधव? क्या वो राधिका को खुद से दूर जाने देगा? क्या राधिका कभी इस ट्रॉमा से बाहर निकलकर आम जिंदगी जी सकेगी? क्या होगा इनके रिश्ते का?